to the 8th edition of the Z Jaipur Literature Festival.
जनवरी का महीना है, जगह है जयपुर, और जो आयोजन हो रहा है उसे जयपुर साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है.
We gather here every year to celebrate words and literature.
आजाद ख्याल का ये विश्व का संभवतः सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है. साल 2015 के इस आयोजन में लगभग 2.5 लाख लोग 300 लेखकों को सुनने पहुंचे, वो भी ऐसे समय में जब भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से हर तरफ से खतरा मंडरा रहा था. ऐसे में आयोजन उस मंच की तरह हो जाता है जहां अलग अलग विचारधाराओं के लेखक और बुद्धिजीवी चारों दिशाओं से जुटते हैं, जहां आजाद ख्यालों को उड़ने के लिए खुला आसमान मिलता है. यहां एक व्यक्ति का जिक्र बार बार होता है, 15वीं शताब्दी के इस कवि को समूचे उत्तर भारत में मोटे तौर पर संत माना जाता है. कई लोग उन्हें ईश्वर का दर्जा भी देते हैं. यहां हर कोई कबीर का उल्लेख कर रहा है.
This was our version of Abide with me, and the words that were in Hindi were a response by the Sufi saint Kabir Das.
But I'm wasting my time, says Kabir. Even death's bludgeon about to crush your head won't wake you up.
भारत के इतिहास में कबीर जैसी दूसरी आवाज शायद कोई नहीं जो पाखंड पर इतना तेज प्रहार करती है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के सीधे सरल सपाट शब्दों में.
कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में.
फिरा हूँ क्या फूले फूले फूले, जब 10 मास उर्ध मुख होते, 100 दिन काहे को भूले. जो माखी सहते नहीं बिहुर, सोच सोच धन कीन्हा, मुए पीछे लेहु करी, भूत रहन नहीं दीन्हा. देहरि लेबर नारी संग हैं, आगे संग सुहेला, मृतक थान ले संग खटोला, फिर पुनि हंस अकेला. जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की इह बड़ाई. राम न रमस मोह के माते, पर हुकाल बस कुआं, कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआ.
कबीर की इस वाणी का अर्थ है,
हे मानव तू किस घमंड में हर वक्त फूला रहता है, तुझे क्या वो महीने याद नहीं जब तू माँ के गर्भ में उल्टा मुंह किए पड़ा था. जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है वैसे तूने धन इकट्ठा किया, और तेरे मरते ही धन तो सब घरवाले ले लेंगे लेकिन तेरे शरीर को घर में नहीं रहने देंगे. पत्नी घर की दहलीज तक साथ निभाएगी और संगी साथी श्मशान तक, उसके बाद तो तेरी आत्मा को अकेला ही होना है. शरीर तो जलकर भस्म हो जाएगा या जमीन में दफन होकर कीड़े मकोड़ों का आहार बनेगा. जिस शरीर पर तू घमंड करता है वो कच्चे घड़े सा टूट जाएगा. हे मानो मोह के वश में तू राम का चिंतन नहीं करेगा तो बस काल रूपी कुएं में ही गिरेगा. घर संसार के जिन चक्रों को तू ईश्वर की भक्ति में बाधक समझता है उनमें तू खुद वैसे ही फंसा है जैसे दानों के लालच में तोता जाल में फंस जाता है.
कवि और लेखक अरविंद मेहरोत्रा ने कबीर के दोहों का अनुवाद किया है. वो कहते हैं,
He is constantly haranguing you, you know, constantly drawing your attention to something.
वे हमेशा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहते हैं. आपका ध्यान लगातार किसी एक बात की ओर खींचते हैं. बहुत तार्किक तरीके से बात कहते हैं, जैसे किसी ने आपको गिरेवान से पकड़कर झकझोर दिया हो. उनकी बातों में उपदेश होता है लेकिन वो इतनी सरल भाषा में कहते हैं कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं.
यदि आप भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो पाएंगे कि कविता बौद्धिक अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम रही है, जिसने समाज और राजनीति को आईना दिखाने का काम किया है. पश्चिमी जगत में कविता को अक्सर भोग विलास के तौर पर देखा सुना जाता है, लेकिन भारत में कविता विचारों के प्रवाह का जरिया रही है. शायद इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निहित हों, जहाँ किसी जमाने में हर हाथ में कागज कलम नहीं होती थी, और तब सब लोग शायद जानते भी नहीं थे कि इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है. शायद यही वजह है कि प्राचीन भारत में लोग छंदों में सोचते थे, उनके विचार काव्य में आबद्ध होते थे, जो लंबे समय तक याद रहते थे, जिनमें गणित, दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक हर तरह के विचार समाये होते थे। ये एक कला है जिसमें कबीर ने स्वयं को निपुण बनाया। कबीर के जीवन के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद कबीर की देह फूलों में बदल गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू उनका अंतिम संस्कार करें या मुसलमान उन्हें दफन करें। कबीर के बारे में न जाने ऐसे कितने किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो बात हमें पक्के तौर पर पता है वो ये है कि कबीर का संबंध 15वीं सदी से है। उनका ताल्लुक कपड़ा बुनने वाले मुसलमानों की एक जाति से था और वो बनारस में रहते थे। जो तथ्य पता नहीं है उन्हें तलाशने के लिए मैं बजरडीहा जा पहुंचा हूं, जो बनारस के पश्चिमी छोर पर बसा निचला इलाका है। बारिश के मौसम में यहां अक्सर पानी भर जाता है। यहां मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान रहते हैं, जिन्हें अंसारी या जुलाहा कहा जाता है। जुलाहे जो कपड़ा बुनते हैं। कबीर की जड़ें इन्हीं बुनकरों में हैं। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, लेकिन बुनकर अब यहाँ कम होते जा रहे हैं। पहले कपड़ा बुनने वाली मशीनें आई, फिर चीनी सूत आया और अब बनारसी साड़ियां सूरत में भी बनने लगी हैं। बनारस के तंग कमरों में काम कर रहे इन बुनकरों के बीच आकर आपको कबीर की आवाज महसूस होने लगती है। कबीर के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिंडा हेस कहती है,
He challenges us. He says, "Hey you, you know, listen."
वो हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, ए सुनो, तुम संत हो, मूर्ख हो, पुजारी हो या मुल्ला, कोई भी हो। कभी कभी वो हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता, हमारी पाखंड और इस तरह की तमाम दूसरी चीजों को खुली चुनौती देते हैं। पहली बार जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि वो हमारे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन नहीं, निसंदेह वो हमारे बारे में ही कह रहे होते हैं।
कबीर किसी को नहीं बख्शते, सबको आड़े हाथों लेते हैं। धर्म का सहारा लेने वाले हिंदू पंडित और मुसलमान मौलवी खासकर उनके निशाने पर होते हैं, जो कथित निचली जाति के लोगों को दान दक्षिणा के बदले ईश्वर से मिलाने की बात करते हैं। कबीर कहते हैं,
जे तू बांभन बम्हनी जाया तो आन वाट ने काहे ना आया, जे तू तुरक तुरक नी जाया तो भीतरी खतना क्यों न कराया।
कबीर के दोहों का अनुवाद करने वाले अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं,
There is no aspect of religion that he leaves untouched. Whether it's, you know, whether it's a sacred...
धर्म का कोई ऐसा पहलू नहीं जो कबीर से अनछुआ रहा हो, फिर वो चाहे कोई पवित्र ग्रंथ हो या जगह, पूजा पाठ की बात हो या दिन में कई बार प्रार्थना करने की आदत।
कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे मशहूर संतों में से एक हैं, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कविता और गीतों का इस्तेमाल किया।
मैबड़ 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 माटी, मण दस ना जटका दस गाठी, मैं बाबा का जोध कहाऊं, अपनी मारी गींद चलाऊं।
भक्ति आंदोलन वैसा ही था जैसा इस्लाम में सूफी आंदोलन। दोनों का मूल विचार एक ही था, जिसमें खुदा और बंदे, भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं था, न कोई पुजारी, न कोई मुल्ला, न कोई जाति और न ही कोई कर्मकांड। गंगा नदी के किनारे बसे बनारस को भारत का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। हिंदू इसे काशी कहते हैं। इसे भगवान की शिव की पसंदीदा जगह कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बनारस में हजारों मंदिर और ऐसी जगहें हैं जिनका संबंध अलग अलग भगवान और संतों से है। कबीर चौरा और कबीर मठ ऐसी ही जगहें हैं। कहते हैं कबीर यहाँ एक झोपड़ी में रहते थे। यही वो चबूतरा है जिस पर बैठकर कबीर लोगों को उपदेश देते थे और यही उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ लकड़ी की बनी चरण पादुकाएं रखी हैं। कहा जाता है कि ये कबीर की चरण पादुकाएं हैं। मठ का संचालन कबीर के ऊंची जाति के अनुयायियों के हाथों में है। यहाँ आप उन अनुयायियों को देख सकते हैं जो कबीर के दोहे गाते हैं। कबीर उनके लिए एक संत हैं जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं। कबीर की वाणी को एक ग्रंथ की शक्ल में संकलित किया गया है जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है। ये उन कई तरीकों में से एक तरीका है जिससे ऐतिहासिक चरित्रों को याद किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है। अरविंद मेहरोत्रा कहते हैं।
एवरी नाउ एंड देन यू नो समवन कम्स अप एंड टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ इट इज।
कबीर को जो कहना होता था दो टूक शब्दों में मुंह पर कह देते थे, बात फिर चाहे हिंदुओं की हो, मुसलमानों की या फिर जात पात की। हालांकि इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दुनिया बदल दी हो।
काशी के भीड़ भाड़ वाले घाटों की दूसरी ओर यानी कि गंगा के पूर्वी तट पर रेत ही रेत पसरी पड़ी है। खाली जमीन वाले इस हिस्से को कटेसर के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोग कभी कभी इसे मगहर के नाम से भी बुलाते हैं। ये वही जगह है जिसके बारे में बीजक में कहा गया है कि आप वहां मरे तो अगले जन्म में गधे बनेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट काशी के घाट पर मृत्यु सौभाग्य की बात मानी जाती है। हो सकता है कि कबीर गंगा के पूर्वी तट पर तब गए हों जब उनके तार्किक दोहों से क्षुब्ध लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया हो, या शायद ऐसा हुआ हो कि कबीर स्वयं अपनी मर्जी से यहाँ चले आए हों। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कबीर आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं और मानो सोच रहे हों नदी की दूसरी ओर बसा ये व्यस्त शहर भी कैसा नगर है। कबीर की तरह इन शब्दों में असहमति का स्वर है। आज के भारत में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे असहमति की आवाजों को अक्सर देश से बाहर निकाल दिया जाता है, यह किताबों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों पर रोक लगा दी जाती है। कई राजनीतिक और धार्मिक समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आहत प्रतीत होते हैं, वो अदालतों पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई जा सके। सलमान रुश्दी जैसे लेखकों की आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे में कबीर और उनके दोहे रह रहकर याद आते हैं।